संक्रांति के दिन आप सब भक्तों का सुबह की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज मकर संक्रांति के साथ साथ बहुत बड़ा वैष्णव उत्सव भी है, क्योंकि आज चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का प्राकट्य दिवस है, आविर्भाव दिवस है, और साथ ही साथ उनके शिष्य के शिष्य गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य थे श्रीनिवासाचार्य, और श्रीनिवासाचार्य जी के शिष्य थे रामचंद्र कविराज। आज उनका तिरुभाव दिवस है रामचंद्र कविराज जी का। जो हमने ये वैष्णव भजन गाया, जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर हेनो प्रभु कोथा गोला आचार्य ठाकुर, ये वैष्णव भजन नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा लिखा हुआ है। और नरोत्तम दास ठाकुर जी का विशेष प्रेम था रामचंद्र कविराज जी से। रामचंद्र कविराज किसके शिष्य थे? श्रीनिवासाचार्य। श्रीनिवासाचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित शिक्षा ग्रहण करते थे जीव गोस्वामी पास से। और श्रीनिवासाचार्य जी के जो शिष्य थे रामचंद्र कविराज, उनका विशेष लगाव था नरोत्तम दास ठाकुर जी से। और नरोत्तम दास ठाकुर जी ने यह भजन लिखा था रामचंद्र कविराज जी के तिरुभाव होने पर। तो अपना क्रंदन कर रहे हैं उनके विरह में, उनके विरह की पीड़ा में वो रो रोए हैं और उनका स्मरण कर रहे हैं रामचंद्र कविराज जी का। उसके उपलक्ष्य में भजन गाया गया। तो आज हम चर्चा करेंगे इन दोनों महान वैष्णवों के गुणों के विषय में और उनसे हम कृपा की याचना करेंगे। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, हे छाई गोसाई करे चरण वंदन, जाहिला विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। तो सबसे पहले हम रामचंद्र कविराज जी के विषय में चर्चा करेंगे। श्री रामचंद्र कविराज जी चिरंजीव सेन के, जो कि चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं, उनके पुत्र थे और श्रीखंड में इनका प्राकट्य हुआ था। रामचंद्र कविराज जी बहुत ही होनहार, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही शक्तिशाली और उत्साही थे। और हालांकि उनका विवाह हुआ था और उनकी पत्नी का नाम था रत्नाला, उनकी कोई भौतिक आसक्ति नहीं थी और हमेशा चैतन्य महाप्रभु की प्रेम में सेवा में संलग्न रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और हमेशा भक्ति करके अपने गुरु श्रीनिवासाचार्य को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। वृंदावन में सजीव गोस्वामी जी ने उन्हें कविराज का ये टाइटल दिया। कविराज का अर्थ है कवियों के राजा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सुंदर श्लोक की रचना की थी। वो श्लोक इस प्रकार है, प्रकाशिला महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र, प्रेम रवदर करी बरिला संसार, अंध अवधियत करे परश, बिन्नु न पड़ीला मुखे रामचंद्र दास। बोलेंगे सब लोग, आसान है। प्रकाशिला महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र, प्रेम रवदर करी बरिला संसार, अंध अवधियत करे परश, बिंदु ना पदीला मुखे रामचंद्र दास। इसका अर्थ इस प्रकार है कि चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं, कृपालु हैं कि उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को प्रकाशित किया। ये भगवान का नाम है, ये सभी जीवात्माओं को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिलाएगा और नरक जाने से बचाएगा। ये हरे कृष्ण महामंत्र हर किसी को राधा माधव के दिव्य प्रेम का आस्वादन कराएगा। चाहे कोई अंधा हो या गूंगा हो, कोई भी इस प्रेम के बाढ़ में डूब सकता है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने हर किसी को कृष्ण प्रेम से भर दिया है और रामचंद्र दास इतना दुर्भाग्यशाली है कि वो इस समुद्र के एक बूंद का भी आस्वादन नहीं कर पाया। रामचंद्र कविराज जी अष्ट कविराजों में से सबसे प्रसिद्ध हैं और श्रीनिवासाचार्य के सबसे प्रसिद्ध शिष्य। रामचंद्र जी ने स्मरण दर्पण, स्मरण चमत्कार और सिद्धांत चंद्रिका जैसे ग्रंथ लिखे और उन्होंने बहुत प्रचार किया और काफी शिष्य बनाए। नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र कविराज बहुत ही श्रेष्ठ मित्र थे। नरोत्तम दास जी ने लिखा है, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। और श्रीनिवास आचार्य प्रभु कृपया मुझ पर कृपा कीजिए और मैं हमेशा रामचंद्र जी के संग का के लिए प्रार्थना करता हूँ। रामचंद्र जी व्रज लीला में श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं करुणा मंजरी के रूप में और उनकी समाधि धीर समीर कुंज में श्रीनिवास आचार्य जी के साथ ही उनकी समाधि स्थापित की गई है। श्री रामचंद्र कविराज जी की, रामचंद्र कविराज शिरोमति महामहोत्सव की। और आज ही साथ में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का भी प्राकट्य दिवस है, आविर्भाव दिवस है। हम सब जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु केवल 48 वर्ष के लिए धराधाम पर रहे और चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षाएं अपने मुख्य पार्षद शरण गोस्वामी के द्वारा स्थापित की। चैतन्य महाप्रभु ने व्यक्तिगत रूप से शिक्षा रूप और सनातन गोस्वामी को दी और रघुनाथ दास गोस्वामी को भी उन्होंने जगन्नाथपुरी में अपना संग दिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में ज्यादा हमें सूचना प्राप्त नहीं होती है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का चैतन्य चर्चा में तो ज्यादा वर्णन नहीं आता। और फिर भी भक्ति रत्नाकर एक ग्रंथ है जिसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय मालूम चलता है। आज हम गोपाल भट्ट गोस्वामी के जीवन चित्र के बारे में चर्चा करेंगे, मुख्यतः भक्ति रत्नाकर से। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का अपने पार्षदों के साथ कितना प्रेममय आदान प्रदान रहा और हम सब साधकों की भक्ति पूर्ण रूप से निर्भर करती है पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा पर। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, येषां तु अनगता पापा जनानां पुण्य कर्मणां स्वेदबंध मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वेता। हम सब अपनी साधना में ये कठिनाई का सामना करते होंगे कि हमारी साधना में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और ये उतार चढ़ाव इस भौतिक जगत के द्वंद के कारण है, सुखों और दुखों के कारण। इसलिए हर व्यक्ति संघर्ष करता रहता है द्वंद से, बिजनेस, परिवार, अपना स्वास्थ्य, इस द्वंद से हमें बहुत सुख और दुख से हम बहुत परेशानी होती है और हमारी भक्ति करने की दृढ़ता कमजोर पड़ती जाती है। तो अगर कोई भक्ति को दृढ़ता से करना चाहता है तो उसको पुण्य कर्म करने पड़ेंगे और पापों से भी मुक्ति पानी पड़ेगी। पुण्य कर्म का अर्थ बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं, ऐसे कार्य जिससे कि पूर्ववर्ती आचार्य प्रसन्न हो। तो पूर्ववर्ती आचार्य षड गोस्वामी ये हमारे महाजन है, महाजन ये कथा सपथ है। तो इनके द्वारा रास्ते पे बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे, इनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हम इनकी कृपा को आकर्षित कर पाएंगे, इनको हम प्रसन्न कर पाएंगे और फिर हम भक्ति दृढ़ता से कर पाएंगे। चाहे संसार के कितने भी द्वंद क्यों ना आए, हम भक्ति दृढ़ता से करते जाएंगे। तो इसलिए ये प्रार्थना करते हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद से हम लोग उनके जीवन चरित्र के कुछ चर्चा करके कुछ प्रेरणा कुछ उत्साह प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वेंकट भट्ट के सुपुत्र हैं और जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करते हैं तो संन्यास के बाद अपने पार्षदों से आज्ञा लेकर वो दक्षिण भारत की यात्रा पर जाते हैं। दक्षिण भारत की यात्रा में चैतन्य महाप्रभु जब जाते हैं तो श्रीरंगम में पहुंचते हैं। श्रीरंगम में रंगनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है, भव्य मंदिर है। कितने भक्तों ने देखा आपने से वो मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर। कहा जाता है कि पूरे भारत में विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर है, रामानुचार्य जी द्वारा स्थापित किया हुआ यह मंदिर है। तो श्रीरंगम में जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर गए और रंगनाथ जी के सामने उनको देखते ही महाप्रभु भावावेश हुए, उन्होंने बहुत ही सुंदर नृत्य किया और जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री गोलेताय की, कृष्णा देव कृष्ण। तो बहुत प्रेमावश होकर चैतन्य महाप्रभु ने रंगनाथ जी की प्रसन्नता के लिए नृत्य किया। तो वहीं पर वेंकट भट्ट भी थे, तो वेंकट भट्ट चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रभावित हुए और वेंकट भट्ट ने बोला कि आप कृपया करके हमारे घर में आइए। तो वेंकट भट्ट के छोटे भाई थे प्रबोधानंद सरस्वती और उनके एक और भाई थे तिरुमला भट्ट और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो उसमें गोपाल भट्ट थे वो पुत्र थे वेंकट भट्ट के। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और चतुर्मास आ गया था तो 4 महीने के लिए लगातार चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर रहे। इतना बड़ा सौभाग्य बहुत कम भक्तों को प्राप्त हुआ कि 4 महीने लगातार चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर रहे और वहां पर महाप्रभु रहते थे और प्रतिदिन श्रीरंगम जी रंगनाथ जी के मंदिर में जाके नृत्य करते थे और वेंकट भट्ट उनका स्वागत बहुत ही स्वागत करते थे घर में। तो धीरे धीरे चेतने महाप्रभु रंगण भट्ट के बीच में बहुत प्रगाढ़ मित्रता हो गई। कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि उनके बीच में साक्षी रस हुआ। तो एक बार चेतने महाप्रभु ने मजाक में पूछा कि आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हो, क्योंकि वेंकट भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती बहुत ही ध्यानपूर्वक लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते थे और उनकी इतनी शुद्ध भक्ति को देखकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। फिर महाप्रभु ने बोला कि ये उच्चतम सिद्धांत को नहीं जानते। उच्चतम सिद्धांत क्या है कि व्रजेंद्र नंद श्री कृष्ण की राधा कृष्ण के चरणों में हमें सेवा प्राप्त हो जाए। तो ये लोग अभी श्री संप्रदाय से हैं, रामानाचार्य जी के अनुयायी हैं और लक्ष्मी नारायण की पूजा बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत पवित्रता से करते हैं, तो इनको वो सिद्धांत भी समझाना चाहिए। लेकिन वेंकट भट्ट काफी वरिष्ठ हैं और उनके साथ उनका साक्ष्य रस से मैत्री भाव है, तो कैसे समझाया जाए। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे थोड़ा जोखिम थोड़ा मजाक करते हैं, बोले आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हो, नारायण को सर्वश्रेष्ठ मानते हो, तो नारायण की जो भार्या हैं लक्ष्मी जी, जो कि पूरी सृष्टि के सबसे अच्छी सबसे बड़ी सती स्त्री हैं, तो नारायण को छोड़कर कृष्ण के पास क्यों जाती है। आप तो लक्ष्मी नारायण के उपासक को बताइए, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो नारायण को गुड बाय करके श्री कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए ललायत रहती है। ललायत ही नहीं रहती है, अपना सारा ऐश्वर्य छोड़कर वो इतनी घोर तपस्या करती है, ऐसा क्यों। तो वेंकट भट्ट जी ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, नारायण और कृष्ण में क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं है, एक ही पति हैं, अलग अलग वेशभूषा डाली हुई है, तो क्या समस्या है इसमें। अगर लक्ष्मी जी कृष्ण का संग करना चाहती हैं तो अपना सतीत्व थोड़ी त्याग रही है, कृष्ण और नारायण में कोई अंतर थोड़ी है, दोनों एक ही है, वेशभूषा अलग अलग है। ये अलग बात है कि कृष्ण ज्यादा मधुर है, कृष्ण की लीलाएं ज्यादा रोचक है, मधुर है, तो निश्चित है उनका उसके प्रति आकर्षण ज्यादा होगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोला आपकी बात ठीक है कि कृष्ण के अंदर चार प्रकार के माधुर्य हैं। कौन कौन से माधुर्य हैं? लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, रूप माधुर्य और वेणु माधुर्य। तो इन माधुर्य के कारण कृष्ण ज्यादा आकर्षक है। लेकिन आप ये बताइए कि इतनी तपस्या करने के बाद भी लक्ष्मी जी को रासलीला में प्रवेश क्यों नहीं मिला। तो ये बात सुनकर वेंकट भट्ट ने बोला देखो आमे जीव क्षुद्र बुद्धि सहज अस्थिर, ईश्वर लीला कोटि समुद्र गंभीर। मैं एक साधारण सा जीव हूँ, छोटी सी बुद्धि है और हमेशा ही मैं विचलित रहता हूँ, और भगवान की लीला तो कोटि समुद्र गंभीर है, ये सब बातें तो मैं नहीं बता पाऊंगा। और मुझे मालूम है कि आप साक्षात कृष्ण हैं, आप ये सब लीला कर रहे हैं, तो आप ही बता दीजिए कि लक्ष्मी जी को प्रवेश क्यों नहीं मिला। अब इतनी गूढ़ बातें मैं नहीं जान पाऊंगा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया कि अगर हमें व्रज लीला में प्रवेश करना है, व्रज लोकेर भावे पाए ताना रचरण तानर ईश्वर करी नहीं जाने व्रज जन। अगर व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के लीलाओं में प्रवेश करना है तो हमें गोपियों के अनुगत होना पड़ेगा, गोपियों के अनुगत होना पड़ेगा। गोपियों के अनुगत का अर्थ है कि अपना सर्वस्व सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित, एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर कृष्ण, यानी कि सेल्फलेस होना ही नहीं, सेल्फ फॉरगेटफुल हो जाना, अपने आप को भूल जाना, यह है गोपियों का भाव। तो अगर वास्तव में हमें गोपियों भगवान की लीला में गोपी के रूप में प्रवेश करना है तो उस गोपी के भाव को अंगीकार करना पड़ेगा। बिना उस भाव को अंगीकार किए कोई भी गोपी नहीं बन सकता। आप देखिए आजकल कितने सहिज्य हैं जो कि अपने आप को बोलते हैं हम सखी हैं या हम मंजरी हैं। केवल सोचने मात्र से ही कोई राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकता। लक्ष्मी जी जो कि इतनी शुद्ध भक्त हैं, भगवान की भार्या हैं, उनको भगवान की रासलीला में प्रवेश नहीं मिल रहा। और हम लोग अपने कलमश जो गंदे मन के साथ, जैसे सब तरह कचरा भरा हुआ है, थोड़ा सा मेडिटेट करके हम गोपियां मंजरी बन जाएंगे। ये इतना सस्ता है? इतना सस्ता नहीं है। पहले सब अच्छे ढंग से नियमों का पालन करके, श्रवण कीर्तन करके हमें अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। पहले हमें कम से कम सेल्फलेस होना सीखना पड़ेगा, है ना। भगवान की लीलाएं हमारे भोग के लिए नहीं है, हमारे एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, सेवा की भावना को विकसित करना पड़ेगा। तो स्वयं लक्ष्मी जी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा कि वो रासलीला में प्रवेश कर सके। नो एडमिशन विदाउट सबमिशन, ये नो परमिशन विदाउट सबमिशन, आपको परमिशन नहीं मिलेगी जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे. गोपियों को सबमिट करना पड़ेगा, उसके भाव को अंगीकार करना पड़ेगा, पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा, तब जाके हमें इसमें प्रवेश मिल सकता है. तो स्वयं लक्ष्मी जी कामे वन में कितने ही वर्षों से तपस्या कर रही हैं, उनको ये सौभाग्य रहता है कि नारायण के वक्ष स्थल पे हमेशा रहती हैं, लेकिन उनको ये सौभाग्य नहीं है कि कृष्ण उनके गले में उनका आलिंगन कर रहे हैं, जैसे गोपियों का आलिंगन करते हैं, उनके आसपास उनके बाजुओं से उनको उनके साथ नृत्य करते हैं. ये सौभाग्य लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं है. उनके चरणों की सेवा कर सकती हैं, उनके वक्ष स्थल पर निवास कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि वो अपने लक्ष्मी का भाव त्याग नहीं रही हैं, वो अपने लक्ष्मी के अस्तित्व को बनाए रखकर रासलीला में प्रवेश करना चाहती हैं, तो सॉरी आप अलाउड नहीं है. तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट का इस तरह से उनका ये कंसेप्ट क्लियर किया और बताया कि देखिए लक्ष्मी जी तो कृष्ण से आकर्षित होती हैं, गोपियों का कृष्ण का नारायण के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, है ना. एक बार जब रासलीला से कृष्ण प्रकट हो जाते हैं तो गोपियां उनको ढूंढती हैं, तो भगवान क्या करते हैं, उनके सामने नारायण के रूप में प्रकट होते हैं चतुर्भुज. तो जब गोपियां कृष्ण को ढूंढते ढूंढते नारायण को देखती हैं तो नमो नारायण करके पूछती हैं, आपने श्याम सुंदर कहीं देखा है? बोला नहीं देखा. ओके आगे चलो. उनको नारायण से कोई भी लेना देना नहीं है. आप बता सकते हैं श्याम सुंदर कहाँ है तो ठीक है. तो गोपियों का नारायण में कोई रुचि नहीं है, लेकिन लक्ष्मी जी की कृष्ण में बहुत रुचि है, लेकिन फिर भी वो रास्ते में उनको एंट्री नहीं मिल रही है. तो इस ढंग से चैतन्य महाप्रभु ने, जिनका कि वेंकट भट्ट के साथ मैत्री भाव था, उन्होंने वेंकट भट्ट के इस मिसकंसेप्ट को दूर किया. वेंकट भट्ट समझते थे, उनकी गलत धारणा थी कि लक्ष्मी नारायण की पूजा ही सर्वोत्तम पूजा है, और चैतन्य महाप्रभु ने उन पर कृपा की और उनको समझाया कि नहीं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं. चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले ये गलत धारणा थी कि कृष्ण विष्णु से निकले हैं, विष्णु का उद्गम जो है, कृष्ण का उद्गम जो है विष्णु से हुआ है, और विष्णु की पूजा नारायण की पूजा सर्वोत्तम है. लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट के इस गलत धारणा को ठीक किया, और बहुत ही प्रेम के साथ, उनके साथ मैत्री भाव था, बहुत ही प्रेम के साथ. उसके बाद उन्होंने फिर शास्त्रों की वाक्यों को उदित करके स्थापित किया कि कृष्ण के सेवा प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है. तो इस ढंग से वेंकट भट्ट और बोधानंद सती और तिरुमल भट्ट, जो कि श्री संप्रदाय में थे, और सीधा क्या बन गए, गौड़िया वैष्णव बन गए. तो चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा रही. तो उस समय गोपाल भट्ट जी की आयु मात्र 7 वर्ष के थे, और 7 वर्ष के छोटे से बालक गोपाल भट्ट जी व्यक्तिगत रूप से चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे, उनका महाप्रसाद का आस्वादन करते थे और उनसे कृष्ण कथा सुनते थे लगातार 4 महीने. फिर जब चतुर्मास समाप्त हुआ तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अब मैं जाना चाहूंगा. ये सुनते ही वेंकट भट्ट मूर्छित हो गए. कौन ऐसे अतिथि को अपने घर से जाने देगा, चैतन्य महाप्रभु. तो वेंकट भट्ट मूर्छित हो गए और गोपाल भट्ट भी जोर जोर से क्रंदन करने लगे, रोने लगे. तो महाप्रभु बोला ठीक है, कुछ देर और रुक जाता हूं. जब हम भगवान के सामने ऐसे रो कर उनको रोकते हैं तो अक्सर देखा गया कि भगवान रुक जाते हैं. महाभारत का युद्ध होने के बाद भी जब कृष्ण वापस द्वारका जाने लगे थे तो कुंती मारी ने बोला थोड़ा सा रुक जाओ, तो भगवान रुक गए. फिर आगे और जाने लगे, युधिष्ठिर महाराज बोला थोड़ा और रुक जाइए, तो 3 महीने और रुक गए. और हम लोगों को बोला समय नहीं है, हम लोग इतने बिजी रहते हैं. भगवान बोले 3 महीने चलो और रुक जाओ. तो भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं. चतुर्मास समाप्त हो गया, सन्यासी हैं चैतन्य महाप्रभु, वो थोड़ा और रुके. तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु, उस समय गोपाल भट्ट थे, चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रेम हो गया, और जब चैतन्य महाप्रभु जाने लगे तो फिर उनको एक आध्यात्मिक दृश्य दिखाई दिया, एक सपना दिखाई दिया. फिर गोपाल भट्ट जी देखते थे कि चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर हैं, इतना लंबा उनका कद, सुंदर काया, इतने सुंदर सन्यासी हैं. तो सोचते थे कि सन्यास से पहले इनकी कितनी मधुर लीलाएं होंगी, निमाई पंडित के रूप में इनके अच्छे अच्छे केश होंगे और क्या क्या सुंदर सुंदर लीलाएं की होंगी. तो उनकी बहुत इच्छा थी कि वो नवदीप लीला का दर्शन कर सके. तो महाप्रभु ने उनके पर इतनी कृपा की कि उनको स्वप्न में पूरी की पूरी नवदीप लीला का दर्शन कराया. और आप सोचिए, निमाई पंडित को उन्होंने दर्शन किया, और केवल दर्शन ही नहीं कराया, गोपाल भट्ट ने क्या देखा कि वो स्वयं नवदीप लीला में भाग ले रहे हैं, ये विशेष कृपा थी। और क्या कृपा की, ये भी दिखाया गोपाल भट्ट को अपना सुंदर द्विभुज श्याम सुंदर रूप के दर्शन कराए। चैतन्य महाप्रभु की, कृष्ण कविराज जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य कृपा करे विचार। किसी का जो इंटेलिजेंस है बहुत लॉजिकल है, तर्क वितर्क करने में विश्वास रखता है, तो बोले अपनी तर्क शक्ति का पूरा प्रयोग करो चैतन्य महाप्रभु कृपा को नापने के लिए। श्री चैतन्य कृपा करे विचार, विचार करे चित्ते पावे चमत्कार। वो विचार करेगा तो क्या पाएगा, अरे भैया ये तो चमत्कार है। गोपाल भट्ट की आयु केवल 7 वर्ष की, बस केवल प्रगाढ़ इच्छा थी कि नवदीप लीला के दर्शन कर रहे हैं। महाप्रभु ने उनको नवदीप लीला के दर्शन ही नहीं कराए, उस लीला में भाग दिलाया और प्रकट कर दिया कि मैं ही स्वयं साक्षात कृष्ण हूं। और यही नहीं, उनको इंस्ट्रक्शंस भी दे दी, बोले कि तुमको क्या करना है, वृंदावन जाना है और वृंदावन में जाके तुम्हें 2 श्रेष्ठ भक्त मिलेंगे, रूप और सनातन। और रूप और सनातन को मैंने अपनी मनोवृत्ति दी है, मैंने अपनी मनोवृत्ति प्रदान कर दी है जिससे कि वो मेरी शिक्षाओं का लेखन करेंगे। हालांकि वो मेरी शिक्षाओं के लिए लेकर ग्रंथ लिखेंगे, लेकिन इन ग्रंथों का प्रचार तुम्हारे शिष्य करेंगे। छोटे से बालक, 7 वर्ष के बालक को बताया जा रहा है कि तुम्हारे शिष्य इन ग्रंथों का प्रचार करेंगे। तो ये सुंदर सा स्वप्न गोपाल भट्ट ने देखा। और जब अगले दिन सुबह उठे तो भागकर चैतन्य महाप्रभु के पास गए, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने उनको यही आदेश दिए, बोले कि अभी आप अपने माता पिता के साथ रहो और जब ये अप्रकट हो जाए तो फिर आप वृंदावन में जाके रूप और सनातन के पास जाना। तो ये कहकर चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर छोड़कर चले गए। उसके बाद गोपाल भट्ट जी ने अपने चाचा प्रबोधन सरस्वती से दीक्षा प्राप्त की। प्रबोधन सरस्वती बहुत बड़े प्रखार पंडित थे, विद्वान थे। इसी रंग से गोपाल भट्ट भी संस्कृत व्याकरण में और काव्य में, तर्क वितर्क में बहुत ही निपुण हो गए और उनकी प्रसिद्धि ख्याति दूर दूर फैल गई। एक वो पंडित ही नहीं थे, साथ ही साथ वो चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते रहते थे, उन्हें बहुत अच्छी भक्ति भी थी। तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वो वृंदावन में जाए। तो समय आता है और गोपाल भट्ट वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में जाके उनसे मिलते हैं रूप और सनातन से। तो यहाँ गोपाल भट्ट वृंदावन जाके रूप और सनातन से मिलते हैं, तो वहां चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट को भूले नहीं। चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं कि वे गोपाल भट्ट इतने प्रसिद्ध हो गए हैं, इसको मेरे आदेश याद है कि नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक पत्र लिखा रूप और सनातन को, बताओ भाई गोपाल आया कि नहीं आया। और रूप और सनातन जी ने वापस से जवाब दिया, हाँ जी गोपाल भट्ट आ गए हैं यहाँ पर, और जैसे आए हैं हमने इसको अपने छोटे भाई के रूप में स्वीकार किया है और बहुत ही अच्छे सन्यासी की तरह व्यवहार कर रहा है। और जितने भी साधुगण हैं वहां पर, कौन कौन से साधु थे वहां पर वृंदावन में, लोकनाथ थे, काशीश्वर पंडित थे, भूगर्भ गोस्वामी थे, ये सब के सब गोपाल भट्ट से मिलकर बहुत प्रसन्न है। तो आप देखिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन किस ढंग से अपने भक्तों का वो ट्रैक रखते हैं। हालांकि वैसे तो वो परमात्मा है, सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन वो पत्राचार कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। उस समय कोई ईमेल या ऐसे कोई SMS भी नहीं होते थे, फटाफट न्यूज पहुंच गई। एक मैसेंजर जाता था लेकर जगन्नाथपुरी से पैदल, यानी कि ट्रेन पकड़ के चिट्ठी भिजवाई है, पैदल एक व्यक्ति आ रहा है जगन्नाथपुरी से वृंदावन, फिर रूप और सनातन जी ने चिट्ठी लिखी, फिर पैदल लेकर वापस जगन्नाथपुरी में गया। आप सोचिए कितना मतलब कि मुश्किल था उस समय पत्राचार करना, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं, विशेष ध्यान रखते हैं। और इसे हम ये भी देख सकते हैं कि हालांकि महाप्रभु स्वयं साक्षात कृष्ण हैं, स्वतंत्र हैं पूर्ण रूप से, लेकिन वो पत्राचार की आवश्यकता का हमें दिखा रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है। यानी कि आपस में गुरु और शिष्य के बीच में कम्युनिकेशन होना कितना आवश्यक है, रिपोर्टिंग कितनी आवश्यक है। वो पत्राचार कर रहे हैं, उसके बाद रूप गोस्वामी जी ने उनको लिखा, एक पत्र लिखा और साथ में ये भी इच्छा व्यक्त की मुझे स्वप्न आया है और गोविंद देव जी कह रहे हैं कि वो अपनी सेवा गोपाल से करवाना चाहते हैं। यमन अपनी इच्छा व्यक्त की। इसके बाद क्या हुआ, जब ये पत्र चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचा जगन्नाथपुरी में, तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और बड़ी प्रसन्नता के साथ इस पत्र में जो लिखा हुआ था, चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षद नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य गदाधर पंडित के साथ बताया और बहुत उन्होंने गोपाल भट्ट का गुणगान किया। गोपाल भट्ट की आयु केवल 7 वर्ष की थी और 4 दिन उनके साथ रहे थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों के बीच में गोपाल भट्ट जी का बहुत गुणगान किया। और उधर गोपाल भट्ट जो वृंदावन गए, वो भी चैतन्य महाप्रभु के श्रीरंगम में कैसे रहते थे, किस तरह से नृत्य करते थे, कैसे कृष्ण कथा करते थे, इसकी चर्चा वो रूप और सनातन जी के साथ करते थे। तो इस ढंग से भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु लीला सुनकर प्रसन्न हुए और गोपाल भट्ट जी की भक्ति को देखकर सुनकर चैतन्य महाप्रभु पार्षद और प्रसन्न हो रहे हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन यही समाप्त नहीं होता, चैतन्य महाप्रभु दोबारा से चिट्ठी भेजते हैं रूप और सनातन को, और इस बार चिट्ठी के साथ कुछ उपहार भेजते हैं गोपाल भट्ट जी के लिए। वो क्या उपहार थे, उसमें चैतन्य महाप्रभु ने अपना कोपिन, अपनी शॉल और एक चौकी भेजी, लकड़ी की चौकी थी जो कि लगभग 12 इंच लंबी और 10 इंच चौड़ी थी, जिसमें जिसको चैतन्य महाप्रभु व्यक्तिगत रूप से उसका प्रयोग करते थे। तो ये चौकी आज भी हमें राधा रमन जी के मंदिर में दिखाई देती है, उसकी पूजा की जाती है। जब ये चैतन्य महाप्रभु का व्यक्तिगत प्रयोग किया हुआ ये सारा सामान पैराफेरेंडिया जब पहुंचा रूप और सनातन के पास और सब साधुओं ने उनको देखा, तो भाव विभोर हो गए और गोपाल भट्ट के अंदर का हृदय कृतज्ञता और प्रेम से भर गया। और चिट्ठी में को स्वामी ने पढ़ के सुनाई, गोपाल भट्ट जी के लिए और आदेश थे, ये आदेश ये था कि कभी भी अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर न रहना और कोई स्थायी निवास स्थान मत बना लेना। तो ये बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन है, हम लोग हमेशा अपने निवास स्थान को लेकर, घर को लेकर चिंतित रहते हैं। गृहस्थ आश्रम में तो भक्त लोग रहते ही हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में भी जो छोटा सा स्थान हमें मिलता है, हम लोग कितने आसक्त हो जाते हैं उससे। कोई भी स्थान मिल जाए बात जी को, वहां अपने आप को कंफर्टेबल बना लेता है ना, बढ़िया सा गद्दा वद्दा बिछा कर बढ़िया सा लगा कर, ये मेरा सामान है बस अब यहीं पर रहूंगा मैं, तो बड़ी सुरक्षा का अनुभव होता है हमें। यहाँ से ट्रेन में भी जाते हैं, ट्रेन में अपनी सीट मिल जाए तो बड़े सुरक्षा का अनुभव होता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि भैया चक्कर में मत फंसना। और भक्त का एक उन्होंने अनिकेतन, यहाँ तो हम दिल्ली में बोलते हैं शांति निकेतन, आनंद निकेतन, लेकिन वास्तव में भक्त अनिकेतन, अनिकेतन मतलब उसको कोई घर नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई निवास स्थान ही नहीं है उसका। जैसे शिव जी कोई निवास स्थान ही नहीं है, पेड़ के नीचे रहते और पूरा परिवार है, ऐसे ही भक्तों का कोई निवास स्थान नहीं होना चाहिए। अगर है ठीक है, लेकिन उसे कोई आसक्त ना हो। तो चैतन्य महाप्रभु विशेष आदेश थे, ये सुरक्षा के चक्कर में मत फंसना और कोई निवास स्थान मत बनाना, और रूप और सनातन के इनके जो लिखने का, शास्त्रों का लिखने का कार्य है, अपना पूरा अधिकांश समय उनकी सहायता करने में बिताना, और हो सके तो इन शास्त्रों को बहुत गहराई से पढ़ना। तो 3 आदेश गोपाल भट्ट जी को फिर से मिले। तो गोपाल भट्ट जी ने इन आदेशों को अपने हृदय में उतारा और रूप और सनातन जी के पूरा उन्होंने सहायक के रूप में सेवा की, और उन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे। उनसे से मुख्य 3 ग्रंथ हैं। सबसे पहले ग्रंथ है जो उन्होंने बोला सत्क्रिया सार दीपिका। सत्क्रिया सार दीपिका यानी कि ऐसा दीप जो कि सत्क्रिया, आध्यात्मिक क्रियाएं जो रिचुअल्स होते हैं उसका सार प्रस्तुत करें। ये विशेषता ग्रस्तों के लिए है कि कैसे कैसे 10 संस्कार करने चाहिए, विवाह संस्कार, गर्भाधान संस्कार, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, उसके आगे 10 संस्कार जो बताए गए हैं उसका क्या महत्व है और कैसे संस्कार करने चाहिए, ये गोपाल भट्ट जी ने लिखे हैं सत्क्रिया सार दीपिका में। और जो लोग निवृत्ति मार्ग पे हैं, सन्यासी लेना है, उनके लिए संस्कार दीपिका लिखा उन्होंने कि सन्यासी के क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या व्यवहार है, कौन कौन से संस्कार है। और इसके साथ एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है हरि भक्ति विलास। तो हरि भक्ति विलास उन्होंने सनातन गोस्वामी जी के साथ मिलकर लिखा। कुछ लोग कहते हैं कि हरि भक्ति विलास का उन्होंने केवल संकलन की, एडिटिंग की, और ये सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट जी का मिला जुला ये हरि भक्ति विलास ग्रंथ है। इसके बाद जीव गोस्वामी के द्वारा शब्द संदर्भ लिखे गए थे, उसके उन्होंने बहुत ही उनकी भूमिका उन्होंने लिखी। और बिलो मंगल ठाकुर जी का जो कृष्ण का नाम ग्रंथ है उसमें उन्होंने टीका लिखी। तो इस ढंग से पूरे वृंदावन में और गौड़िया वैष्णव में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बहुत प्रसिद्ध हो गए और वो रूप और सनातन के छोटे भाई के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो भक्तों के बीच में ऐसा प्रेम होना चाहिए कि वो भाई लगते थे कि छोटे भाई हैं। जीव गोस्वामी तो थे ही उनके भतीजे और गोपाल भट्ट उनके छोटे भाई के रूप में प्रसिद्ध हो गए। और फिर एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी आए, क्योंकि सभी वैष्णव उनसे ये निवेदन कर रहे थे कि आप चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विषय में लिखिए। तो सब वैष्णवों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कृष्णदास कविराज जी आए। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास कृष्णदास कविराज गोस्वामी आए तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें आशीर्वाद तो दूंगा लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? मेरा नाम कहीं भी चित्त चर्चा में नहीं आना चाहिए। तो यही कारण है कि हमें गोपाल भट्ट जी के बारे में ज्यादा मालूम नहीं चलता चित्र के माध्यम से। तो ये भक्तों का भाव होता है कि वो किसी भी ढंग का मान नहीं चाहते। भाव भक्ति की स्थिति पे कोई भक्त होता है तो इसका एक लक्षण है मान शून्यता, उसको मान की अपेक्षा नहीं रहती। श्री प्रभुपाद 15वें अध्याय के 5वां श्लोक जो कि प्रसिद्ध श्लोक है, कौन सा श्लोक है वो? निर्मान मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्व कामा द्वंदेर मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। अगर हम भगवान के धाम में प्रवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्थिति कंडीशन क्या है? निर्मान, हमें मान की भावना से रहित होना पड़ेगा। और श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं Those who expect honor can never surrender। कि जो आदर की इच्छा रखते हैं, सम्मान की इच्छा रखते हैं, वो कभी भी शरणागत नहीं हो सकते। और बिना शरणागत हुए हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? तो एक बद्ध जीव के लिए मान की इच्छा के लिए ललायित रहना बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। भगवान के धाम में तो प्रवेश करना छोड़ें, हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान को भी अनुकूल नहीं कर सकते अगर हमारे अंदर मान की प्रगाढ़ इच्छा है। भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान का कैसे अनुशीलन करना है। अमान्यत्वम अधम्यत्वम अहिंसा शांति राजम, 18 गुण बताए हैं आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए। इसमें सबसे पहले है अमान्यत्वम, माना मान की इच्छा से रहित होना, इसको बोला गया है विनम्रता। तो प्रभुपाद जी इसकी क्या परिभाषा देते हैं अमान्यत्वम की? प्रभुपाद कहते हैं विनम्रता अमान्यत्वम का अर्थ है मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए, है ना। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है टू बी फ्री फ्रॉम द एंग्जाइटी ऑफ गेटिंग ऑनर। हमें इच्छुक नहीं, एंग्जाइटी चिंता रहती है कि हमें मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, या प्रॉपर मान मिला है कि नहीं मिला, मेरा जितना सम्मान होना चाहिए था इतना हुआ है कि नहीं हुआ। हम लोग अक्सर देखते हैं भौतिक जगत में भी कोई विवाह का सेरेमनी होती है तो अक्सर रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं होते हैं ना कि फलाने को इतना मान मिल गया मुझे नहीं मिला, बड़े भाई को छोटे भाई को मिलने में ये हुआ। बहुत जल्दी व्यक्ति नाराज हो जाता है। इच्छुक रहना, एंग्जाइटी रहना कि मुझे इतना मान मिलना चाहिए था। और वही प्रवृत्तियां हम आध्यात्मिक जगत में ले आते हैं, भक्तों के संग भी आते हैं कि जितना मान मिलना चाहिए था मुझे नहीं मिल रहा। तो इस ढंग की अगर भावना रहेगी तो हम कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें भक्त जी को हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए कि मैं इस एंग्जाइटी से मुक्त रहूं। बहुत बड़ी एंग्जाइटी है ये। तो बल्लभ विद्याभूषण जी अपनी कमेंट्री में बताते हैं कि निर्माण होने का सबसे अच्छा तरीका है कि मान दो, मान देना शुरू कर दो। जितना रिस्पेक्ट ऑल, सबको आदर देंगे, मान देंगे तो क्या होंगे, हम निर्माण हो जाएंगे। तो हमारे अंदर मान पाने की इच्छा, जो एंग्जाइटी है, चिंता है, वो कम हो जाएगी। तो गोपाल भट्ट जी मान शून्य, उनको डर लगता था कि बहुत ज्यादा मेरी प्रसिद्धि हो गई तो मैं अपने जीवन के लक्ष्य से विचलित हो जाऊंगा। तो एक साधक के रूप में हमें सिखा रहे हैं। तो इस ढंग से उन्होंने बोला कि मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, तो कृष्णदास कविराज जी को वो प्रॉमिस रखना पड़ा, तो इसलिए उनका नाम कहीं नहीं आया। लेकिन जैसे कि एक सूर्य को कौन छिपा सकता है, सूर्य अपने आप को प्रज्वलित करेगा ही करेगा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जो प्रसिद्धि थी, ख्याति थी, चारों तरफ फैल रही थी। और जब एक बार वो वृंदावन से गंडकी नदी पे गए, गंडकी नदी प्रसिद्ध है नेपाल में शालिग्राम शिला जी के लिए, तो स्नान कर रहे थे, तो स्नान करने के लिए उनके पास कमंडल था। तो जब भी कमंडल नदी में डालते थे तो क्या देखते थे, 12 शिला उसके अंदर आ जाते थे और उसको दोबारा फेंकते थे, फिर पानी लेने का प्रयास करते थे, फिर उसमें 12 शिला आ जाते थे, फिर उसको फेंकते थे, फिर 12 शिला आ जाते थे। तो समझ गए कृष्ण की इच्छा है कि मैं शिला को ले जाकर इनकी पूजा करूं। तो फिर वो 12 शिलाओं को लाए और वृंदावन में वो एक हमेशा चोले में डाल के, कपड़े के उसमें डाल के गले से लटका के घूमते थे। तो एक बार क्या हुआ, नरसिंह जयंती का दिन था, एक व्यापारी वृंदावन में आए और उन्होंने गोपाल भट्ट जी को भगवान के श्रृंगार के लिए बहुत सुंदर आभूषण, बहुत सुंदर वेशभूषा, सुंदर सुंदर मुकुट दे दिए। तो गोपाल भट्ट जी ने देखा इसको तो बेचारे जोर जोर से रोने लगे, अरे मेरे पास तो जैसे रूप जी के पास गोविंद देव जी हैं, सनातन के पास बड़े भाई उनके पास मदन मोहन जी हैं, मेरे पास कोई ऐसा विग्रह नहीं है और ये व्यापारी मुझे ये सब दे गया, मैं किसका श्रृंगार करूं। तो उनको अंदर बहुत तीव्र इच्छा हुई कि काश मेरे पास भी ऐसे विग्रह होते कि मैं उनका श्रृंगार कर सकता, उनकी कुछ सेवा कर सकता। तो ये रोते रोते वो सो गए। जब सुबह उठे तो क्या देखते हैं कि 12 शिला में से एक शिला है दामोदर शिला, उस दामोदर शिला में से स्वयं राधा रमन जी प्रकट हुए थे। और वो राधा रमन जी की जो सुंदरता है वो अतुलनीय है। राधा रमन जी कि आप देखते हैं कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, दोनों कर्मों तक वो आंखें जाती हैं, और राधा रमन जी की जो ऊंचाई है कितनी है, मुश्किल से 12 इंच है ना, 12 इंच इनकी ऊंचाई है। और जब ये बात मालूम चले कि दामोदर शिला में से स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और बाकी सब वैष्णवगण भाग के वहां पर आए और वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी रोते हुए बिल्कुल भावावेश में आके राधा रमन जी को प्रणाम कर रहे हैं, जोर जोर से प्रार्थनाएं गा रहे हैं और सब भक्तगण जय जयकार कर रहे हैं, आप देखिए कितना बड़ा चमत्कार। और अभी भी हम देखते हैं राधा रमन जी के पीठ में विग्रह के पीछे एक निशान है, जैसे मालूम चलता है कि कैसे वो दामोदर शिला से फूट कर निकले, केवल अपने भक्त के प्रेम को स्वीकार करने के लिए। कि भक्त की इच्छा थी कि मैं भगवान का श्रृंगार करूं, भगवान से कुछ आदान प्रदान करूं, उनकी सेवा करूं। तो भगवान ने बोला ठीक है, हियर आई एम, आ जाता हूं। दामोदर शिला से राधा रमन जी प्रकट हो गए और ये एकमात्र ऐसा विग्रह है जो कि गोस्वामी द्वारा प्रकट किया गया है जो अभी भी वृंदावन में है। बाकी हम देखते हैं औरंगजेब के आक्रमण करने के बाद सबको जयपुर में स्थानांतरित करना पड़ा। तो भक्तगण बताते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है, राधा रमन जी का छोटा सा आकार 12 इंच का। जब औरंगजेब ने आक्रमण किया तो दामोदर जी बहुत बड़े हैं, गोविंद जी भी बहुत बड़े हैं, तो राधा रमन छोटे, उनको बोला ये क्या होंगे छोटे। तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ गए। वैसे ढंग से राधा रमन जी तब से वृंदावन में विराजमान है। तो राधा रमन जी का विग्रह बहुत ही विशेष है और तब से हम वो प्राकृतिक स्थली भी जानते हैं। तो फिर सब वैष्णवों के बीच में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने इस विग्रह का नाम रखा राधा रमन देव। इसका अर्थ क्या है, जो कि राधा रानी को आनंद दे। ये नाम इसलिए रखा क्योंकि जिस स्थान पे राधा रमन जी प्रकट हुए थे बहुत ही निकट है, दास स्थली के निकट है, जहां से कृष्ण अप्रकट हो गए थे राधा रानी को लेकर। पहले तो सब गोपियों के बीच में से राधा रानी को लेकर प्रकट हुए, फिर राधा रानी को भी छोड़कर कृष्ण अप्रकट हो गए थे। ये वो स्थान है जब राधा रमन मंदिर से परिक्रमा मार्ग पे आते हैं यमुना जी के लिए, तो बिल्कुल बाएं मुड़ते ही हैं। तो कुछ भक्त लोग हमारे साथ गए थे अभी कुछ महीने पहले, वो स्थान कहता है झाड़ू मंडल, याद आता है झाड़ू मंडल स्थान है। तो झाड़ू मंडल स्थान है, वहां जामुन का एक वृक्ष है जहां से ही कृष्ण राधा रानी के साथ थे, फिर वो अप्रकट हो गए थे और इससे राधा रानी का जो प्रेम था कृष्ण के प्रति और प्रगाढ़ हो गया था। तो इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उस स्थान इस विग्रह का नाम राधा रमन देव रखा। तो उसके बाद वो निरंतर उनका श्रृंगार करते रहे और उनकी सेवा करते रहे, काफी साल ऐसे बीत गए। तो एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय में चैतन्य महाप्रभु का बहुत ही तीव्र स्मरण हो रहा था और उनका उनको विरह का अनुभव हो रहा था और उनको स्मरण हुआ कि उन्होंने अपने पिता वेंकट भट्ट को ये बोला था कि हमेशा चैतन्य महाप्रभु को ही अपना इष्ट मानेंगे, उनकी पूजा करेंगे। और अब वो क्या कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की पूजा न करके राधा रमन जी की पूजा कर रहे हैं। तो उनको अंदर एक संशय उत्पन्न हुआ, क्या मैं ठीक कर रहा हूं? तो यदि ये संशय उत्पन्न हुआ तो क्या देखते हैं, राधा रमन जी अपने आप को प्रकट करते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और ये दिखाते हैं कि मुझ में और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। क्या अब देखिए भगवान किस प्रकार से शुद्ध भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, कितने सुलभ हैं भगवान। जैसा कि भगवत के आठवें अध्याय के 14 श्लोक में क्या बताया गया है, कौन सा श्लोक है वो, अनंत सत्तम योम स्मृति निश्चय तेषां सुलभ पार्थन नित्य युक्त उपासक। अन्य चेतन सत्तम योमाम स्मरती नित्यशा, जो अनन्य चेतना से मेरा निरंतर स्मरण करता है, तेषां सुलभम पात, बहुत ही आसानी से मैं उनके लिए प्रकट होता हूँ, बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता हूँ। आप देखिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चरित्र में, जीवन चरित्र में, जब जब उन्होंने इच्छा प्रकट की भगवान उनकी इच्छा पूरी कर दी। उन्होंने बोला मैं आपके नवदीप लीला देखना चाहता हूँ, लो नवदीप लीला, उसमें भाग लेना चाहता हूँ, लो भाग लेना। उन्होंने श्याम सुंदर का भी रूप का भी दर्शन कराया, उनकी इच्छा हुई मैं विग्रह की सेवा करना चाहता हूँ, विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। उनकी इच्छा में आपको चैतन्य महाप्रभु रूप में देखने चाहिए, चैतन्य महाप्रभु रूप में प्रकट हो गए। तो राधा रमन जी का विग्रह बहुत ही विशेष विग्रह है। इसमें राधा रमन जी के विग्रह में हम गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और मदन मोहन तीनों के दर्शन कर सकते हैं। इनके जो चरण है वो किसके समान है, मदन मोहन जी के समान। इनका वक्षस्थल गोपीनाथ जी के समान, और उनका जो मुखारवंद है वो है गोविंद देव जी के समान। तो इस ढंग से हम राधा रमन जी के दर्शन कर सकते हैं और उनका स्मरण कर सकते हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य से श्रीनिवासाचार्य और श्रीनिवासाचार्य जी के शिष्य से रामचंद्र कविराज, तो ये तीनों मंजरी हैं। मंजरी छोटी गोपियां होती हैं जो कि राधा कृष्ण के निकुंज में प्रवेश करके राधा कृष्ण के निकुंज में सखियों को भी ये परमिशन नहीं होती जब राधा कृष्ण अकेले होते हैं निकुंज में, लेकिन ये मंजरियां वहां पर रहती हैं और भगवान की गोहितम लीलाओं में राधा रानी की वो सेवा करती हैं। तो ऐसे ही एक वर्णन आता है कि श्रीनिवास आचार्य हैं अपने सिद्ध स्वरूप में मणि मंजरी, और रामचंद्र कविराज जी हैं कर्ण मंजरी, और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को अनंग मंजरी भी कहा जाता है और गुण मंजरी भी कहा जाता है। तो एक बार श्रीनिवास आचार्य विष्णुपुर में, जाकि वहां के राजा वीर हम वीर थे, वो वैष्णव बन गए थे, तो वहां पे श्रीनिवासाचार्य रहे कुछ समय तक, और उनके विग्रह थे मंशी वदन, उनकी वो सेवा करते थे। तो ये शुद्ध भक्तों की क्रियाएं देखें तो शुद्ध भक्त श्रीनिवासाचार्य प्रतिदिन समाधि में जाते थे। समाधि का अर्थ है कि वो उसी साधना देह में रहते हुए अपने सिद्ध देह से राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करके और सेवा करके वापस इस जगत में आते थे। हम लोग नकल नहीं मार सकते, लेकिन वो इतना मेडिटेशन करते थे कि सिद्ध देह थी उनकी, उनको मालूम था उनका स्वरूप क्या है, और सिद्ध देह में जाके नित्य लीला में प्रवेश करके सेवा करते थे। तो उनका क्या स्वरूप था, मणि मंजरी। तो एक बार ध्यान लगाया उन्होंने और मेडिटेशन कर रहे थे, तो कुछ घंटे बीत गए और कुछ घंटों के बाद पूरा दिन बीत गया और बिल्कुल स्तब्ध बैठे हुए हैं। तो उनके सब परिवार वालों को चिंता हो गई कि क्या हो गया। एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गए, और सब वैष्णव इकट्ठे हो गए और सबको लगा कि अब श्रीनिवास आचार्य नित्य लीला में प्रवेश कर चुके हैं। नाचिका के पास श्वास देखा तो कोई श्वास नहीं चल रहा, बिल्कुल स्तब्ध। तो सोचा क्या होगा, तो सबने बोला कि इनके जो परम शिष्य है रामचंद्र कविराज जी को बुलाया जाए, वही कुछ बता सकते हैं। लेकिन रामचंद्र कविराज तो बहुत दूर रहते थे, और जब तक उन तक समाचार पहुंचेगा कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो सब लोग बहुत चिंता में थे। तभी क्या हुआ, अगले दिन रामचंद्र कविराज स्वयं आ जाते हैं। तो गुरु और शिष्य का ये हृदय का संबंध है। रामचंद्र कविराज यहाँ पे स्वयं आते हैं और सब भक्तों को चिंता में देखते हैं, तो बोलते हैं चिंता मत कीजिए, बहुत शीघ्र ही ये वापिस अपनी चेतना में आ जाएंगे। तो मैं भी मेडिटेशन में समाधि में जाता हूँ। तो बिल्कुल दूसरे जगत की बातें हुई। तो रामचंद्र कविराज जी भी समाधि में प्रवेश करते हैं और समाधि में प्रवेश करके नित्यानंद लीला में प्रवेश करते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। क्या चल रहा है कि सब मंजरियां बहुत चिंता में हैं और एक चीज को ढूंढ रही हैं। तो भाग दौड़ मची हुई है। तो ये रामचंद्र कविराज जी कर्म मंजरी हैं, तो भाग के जाते हैं अपने गुरु, उनके गुरु कौन है? सीमा सचार्य। वो कौन सी मंजरी है? मणि मंजरी। बोले क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बोले क्या बताएं, कल महाराज किया था राधा रानी ने, उसके बाद यमुना में स्नान किया, स्नान करके बाहर निकली तो उनके नाक की नथ नहीं है, तो नथ मिल नहीं रही है काफी टाइम से, सब मंजरियां लग रही हैं ढूंढ रही है। तो बोले ठीक है, मैं भी प्रयास करती हूँ। तो फिर उनकी आज्ञा प्राप्त करके रामचंद्र कविराज जी कर्म मंत्री हैं, वो भी यमुना में प्रवेश करते हैं और गुरु की कृपा से उनको वो नथ मिल जाती है जो कि श्रीनिवास आचार्य पिछले दो दिन से ढूंढ रहे थे। तो नथ मिलती वो क्या करती हैं, कर्म मंजरी इसको जाकर देती हैं अपने गुरु मणि मंजरी को, और फिर मणि मंजरी किसको देते हैं, अपने गुरु गुण मंजरी को, और गुण मंजरी क्या करती हैं, इसको देती हैं ललिता सखी को, और ललिता सखी फिर किसको देती हैं, श्रीमती राधा रानी को। तो इसे आचार्य को बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भी ये क्रम को रखा जाता है कि शिष्य गुरु को वो कभी भी ओवरस्टेप नहीं करता। दो दिन से सारी मंजरियां परेशान थी आध्यात्मिक जगत में, रामचंद्र कविराज आते सीधा नंबर मानते, ये लो राधा रानी अभी लेकर है ना, आई एम द नंबर वन मोस्ट इंटेलिजेंट मंजरी, देखिए इनमें से कोई भी नहीं ढूंढ पाए, अभी अभी मैं आया हूँ अभी ले, क्या इतना आसान था, ये लो ना बोलते यस यू आर द बेस्ट, इम्प्रेस हो जाते ना राधा रानी। नहीं, उन्होंने कहा दिया मन दिया अपने गुरु को, फिर उन्होंने अपने गुरु को। तो जब क्रेडिट लेना हो तो हमें कभी भी ओवरस्टेप नहीं करना चाहिए, शुड गिव द क्रेडिट टू ऑन गुरु, उसके बाद वरिष्ठ वैष्णव फ्रॉम गुरु, इस ढंग से हमें ट्रांसफर करना चाहिए, इससे हमें ज्यादा कृपा प्राप्त होती है। अभी जो सचिनंद स्वामी महाराज आए थे तो वो बता रहे थे, बहुत सुंदर बात उन्होंने बताई, वो हम गुणगान कर रहे थे, काफी प्रशंसा कर रहे थे, फिर बोले थे कि इस प्रशंसा को पी मत जाना, ये जो प्रशंसा है जहर के समान है, नीलकंठ को याद करो, भगवान शिव को याद करो, केवल यहीं तक रखो, अंदर गई तो सर्वनाश, तो क्या करो, ये प्रशंसा सुनो और तुरंत बाहर निकाल दो, गुणगान करो अपने गुरु का और वैष्णव का, नहीं तो ये जहर के समान अंदर चली गई तो सब समाप्त हो जाएगा, सब भक्ति खत्म। इसलिए रामचंद्र कविराज जी को जैसे ही वो मिली उन्होंने तुरंत अपने गुरु को दी, उसके बाद उन्होंने अपने गुरु को दी और फिर राधा रानी के पास पहुंचे। तो जब राधा रानी के पास पहुंचा तो वो बहुत प्रसन्न हुई, तो उन्होंने अपना चबाया हुआ पान जो महाप्रसाद था वो मणि मंजरी को दिया, यानी कि श्रीनिवास आचार्य जी को, और श्रीनिवास आचार्य जी को उन्होंने अपने कपड़े में बांध लिया, और उसके बाद बहुत जोर से चिल्लाकर श्रीनिवास आचार्य बाहरी चेतना में आ गए और रामचंद्र कविराज जी भी बाहरी चेतना में आ गए और सब भक्त लोग नाचने लगे। तो सब भक्त लोग, ये इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है, कौन सी सुगंध है ये? तब श्रीनिवास आचार्य को स्मरण हुआ, अरे कुछ महाप्रसाद मिला था, तो वो महाप्रसाद तंबूल था श्रीमती राधा रानी का, तो सब भक्तों ने उसको ग्रहण किया। तो ये है आध्यात्मिक जगत के आदान प्रदान, और हम सब भी इस तरह की लीलाओं में भाग लेने के अधिकारी हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और पूर्ववर्ती आचार्य की कृपा से। हमें पूरा विश्वास होना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी के दिए हुए आदेशों पर, और श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्यगण हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं उनके आदेशों पर, ये जो मोमेंट है, ये हरे कृष्णा जो आंदोलन है, ये बहुत ही अनोखी और अनूठी और अद्भुत मोमेंट है, और इस कलयुग का ये विशेष जिसे कहते हैं उपहार है भगवान श्री कृष्ण का हम जैसे पदजीवों के लिए, तो इस विशेष उपहार का हम पूरा लाभ उठाएं इस हरे कृष्णा आंदोलन का, और इसी जीवन में हम ये कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, और इसी कृष्ण प्रेम की याचना हम आज गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और रामचंद्र कविराज जी से करेंगे कि हम मान शून्य होकर और पूरे अच्छे ढंग से अपने गुरु वृंद की, हम जो हमारे वर्तमान आचार्य वृंद हैं और पूर्वती आचार्य वृंद हैं, इनकी शिक्षाओं को हम समझ सकें, अपने जीवन में उतार सकें और अपने जीवन के परम लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की, श्री रामचंद्र कविराज जी की, चैतन्य महाप्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, और सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।